يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. اب یہاں سے آگے مسلسل آپ دیکھیں گے امت مسلمہ کو کچھ احکامات ملیں گے. کون سے؟ پہلا حکم, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم نے اہل کتاب میں سے گروہ کی بات مانی تو وہ تمہیں ایمان سے پھر کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے. تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا کیا موقع باقی ہے جبکہ تم کو اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ ہائی لائٹ کیجیے گا. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ, جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا. پہلا حکم, مشورہ. آپ اس کو حکم کہیں تو اللہ کی شان ہے کہ وہ حکم دیں. چلیے حکم نہیں تو مشورہ تو لے لیجیے. لیکن افسوس کی بات ہے, یہ مشورہ بہت سارے مسلمانوں کو آج کے دور میں پسند نہیں. دیکھیے, بنانے والا بتا رہا ہے کہ وہ تمہیں کفر کی طرف لے جائیں گے اگر تم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلو گے. تو اس میں پھر مجھے اور آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انسان اپنی دوستیوں اور دشمنیوں کا قبلہ درست کرے. کسی کے غلط عقائد, ان کے رسم و رواج, ان کے طور طریقوں کو اپنانے سے پہلے ان آیات کو یاد رکھ لے. اور کریں کیسے؟ اب کہتے ہیں کریں کیا, پیئر پریشر بہت ہے, سوسائٹی ساری ایک کام کری, ہم کیا کریں؟ تو اللہ نے کہا میں یا تسم بلّہ. یہاں ہلکی سی بات کروں گی. آپ دیکھیے کہ ایک ہے کہ آپ اللہ کا دامن پکڑے اور ایک ہے کہ اللہ آپ کا ہاتھ تھام لے. کون سا مضبوط ہوگا؟ آپ اللہ کا ہاتھ تھامتے ہیں نا, تو جب ذرا کوئی مشکل آتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں, ذرا سی آزمائش آتی ہے چھوڑ دیتے ہیں, ہلکی گولی چلتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں اب چھوڑ دو, سب چادریں نقاب سب سکاف محمد نام سارا کو چھوڑ دو کیونکہ وہ سب کو آپ کو ٹیررسٹ کہیں گے. ایک ہلکی سی عمارت گری چند سال پہلے, لوگوں نے اپنے نام تک بدل دیے, سب کچھ اتار کے پھینک دیا کہ کسی بھی طرح مسلمان نہ لگو. یہ ہے آپ نے اللہ کا ہاتھ تھاما. آپ سوچیے نا, انگلی ہے آپ کی, انگلی کوئی تھام رہا ہے. اب جب انگلی ذرا سے حالات ہوئے آپ چھوڑ دیں گے؟ یہ آپ ہیں, یہ اللہ کی ذات ہے. آپ نے اللہ کے دین کو تھاما ہوا تھا, آپ عمل کرتے ہیں, آپ کو مسلم ہونا اچھا لگتا ہے. لیکن جب باہر سے کوئی پریشر آتا ہے, کوئی میڈیا پہ خبر آتی ہے, کوئی ایئرپورٹس کی کوئی خبر ہے, کہیں کوئی خبر ہے فلان نے چھین لیا, یہ کر دیا وہ کر دیا, آپ فوراً چھوڑ دیتے ہیں. اب آپ انسیکیور, جب آپ نے اللہ کا ہاتھ جو چھوڑ دیا تو اب تو آپ لڑکیں گے, پھر لوگ آپ کو برا کہیں بھلا کہیں, ان کو حق ہے. دوسری صورت ہے کہ آپ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے پکڑ لے. اللہ نے آپ کو پکڑ لیا, اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. یہ تو آپ کیا کرے کہ اللہ تو میرا ہاتھ تھام لے. جیسے بچہ کہتا ہے نا کہ باپ کو, ابو میں آپ کی انگلی پکڑوں گا, تو باپ کہتے ہیں نہیں بیٹا میں تیری انگلی پکڑوں گا, کیونکہ بچے نے تو ذرا ایک کینڈی دیکھی تو باپ کی انگلی چھوڑ دینی ہے. یہی حال آج ہمارا اس دنیا میں, ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بڑے پیار سے تھامتے ہیں. آج کل رمضان میں تھاما ہوا ہے, مسجدوں کی طرف ہمارے قدم لگے ہوئے ہیں, قرآن کے ورق ہم پلٹ رہے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہاتھ چھل جاتا ہے. اس دور قرآن میں ہم نے اللہ سے استقامت مانگنی ہے کہ اے میرے مالک تو مجھے استقامت دے, اے میرے مالک میں تجھے کبھی نہ چھوڑوں. اس کے بعد دوسرا حکم, اس پارے کے سارے احکامات نوٹ کریں گے, ایک طویل لسٹ تیار ہو جائے گی. ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے پرابلمز ہیں, سلیوشن کیا ہے؟ اس کا پہلا سلیوشن وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ. اب دوسرا سلیوشن, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تم اللہ سے اس طرح ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. چند لمحوں کے لیے حق کا تکاتی پہ غور کیجیے. ہر ایک سے ڈر کا حق الگ ہوتا ہے نا, لیکن مالک سے ڈرنے کا حق کتنا ہوگا؟ خود سے سوال کر لیجیے تدبر, کیا میں اللہ سے اتنا ڈرتی ہوں جتنا ڈرنے کا حق ہے؟ صحابہ اس آیت پہ کانپ گئے تھے, کہتے اللہ ہم تو اتنا ڈر سکتے ہیں جتنا ہماری اوقات ہے, ہم اتنا تو ڈر ہی نہیں سکتے جتنا آپ سے ڈرنے کا حق ہے. تو اس پہ آئے تو تر گئی تھی فتق اللہ مستتا تم, تو اب آپ تو اور میں تو دیکھتے ہیں کتنا ڈر تو کوئی نہیں. تو پھر ایک دعا مانگ لیجئے, اللہم انی اسلک الہدا والتقا. اللہ کے نبی کی سکھائی بھی دعا ہے, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا بھی اور تقوی کا بھی. جب کوئی چیز نہیں ہوتی مانگتے ہیں تو مل جائے گی. پھر فرمائے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو. تمہارا تقوی ٹائم بانڈ نہیں ہونا چاہیے, تمہارا تقویٰ صرف رمضان کا تقویٰ نہ ہو, مکہ اور مدینہ کے ٹریول کا تقویٰ نہ ہو, حج اور عمرہ کا تقویٰ نہ ہو, یا کوئی مصیبت آ جائے کوئی دکھ کا وقت ہے تو تقویٰ نہیں. تمہارا تقویٰ زندگی کے اوپر چھا جائے, خوشیوں میں تقویٰ, غموں میں تقویٰ, شادیوں کا تقویٰ. آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ جی بالکل, ہر موقع کا تقویٰ فرق ہوتا ہے. کبھی کسی کو معاف کر دینا تقویٰ ہے, کبھی خوشی کو اللہ کی مرضی کا کر لینا تقویٰ ہے, کبھی کسی دیے ہوئے دکھ جو اللہ کے راستے میں آپ کو ملا اس کو مان لینا یہ تقویٰ ہوتا ہے, और हकीकत यह कि तकवा वो फोर्स है जो एक इंसान को अल्लाह के रास्ते में जमाती है, और ये तकवा ना होगा तो बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला ने हम सबको बता दिया कि तुम इस दुनिया में आए हो, फिक्र करो। एक सहाबी का कॉल है कि ईमान का लिबास तकवा है। ईमान का भी कोई लिबास होता है? बिल्कुल होता है। और ईमान की जीनत हया है, और ईमान का फल इल्म है। अगर आप देखें तो इल्म आता है, हया आती है, साथ ही तकवा जाता है। तकवा का लफ्ज इतनी दफा यूज हुआ है, आप तो इतनी जल्दी क्विकली देख ही नहीं सके होंगे, लेकिन पहले पारे में तकरीबन 9 बार तकवा का लफ्ज आया, दूसरे पारे में 17 बार तकवा का लफ्ज था, और अगर पूरे कुरान में आप देखें, आगे जाएंगे हम सूरत मायदा में, सबसे ज्यादा तकवा का लफ्ज आएगा। ये क्या बताता है कि असल चीज जिसको मांगो वो तकवा है। हम माल दौलत औलाद घर बार शादी मंगनी ब्याह में रोए रहते हैं। आप अल्लाह का तकवा मांगिए, आपको सूरत मुनाफिकून में अल्लाह खुशखबरी देगा, वह मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए जरूर निजात देगा। यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, उसको वो सब देगा जो रिस्क जिसने सोचा भी नहीं होगा। आपकी कोई अल्लाह से जरूरत है? हर एक की हो सकती है, किसी को औलाद चाहिए, किसी को माल चाहिए, किसी की शादी हो। आप दिल में ये नियत रखें, मैं आपको वजीफा बता रही हूँ क्योंकि वजीफे हकीकत में कारगर होते हैं। आप दिल में वो अपनी ख्वाहिश रखें कि अल्लाह ताला मुझे आपसे ये चाहिए, और फिर वही सूरत सोचे कि अल्लाह ने कहा जो मुझसे डरेगा उसको मैं दूंगा, तो आप अल्लाह से डरना शुरू कर दें। कोई अपना गुनाह छोड़े, कोई नेकी अपनाए, आप देखिएगा कि अल्लाह ताला आपको जरूर अता फरमाएगा, और फरमाए तुमको मौत ना आए इस हाल में कि तुम मुसलमान हो। ये ख्वाहिश करेंगे ना, इंशाल्लाह इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। तीसरा हुक्म जो अल्लाह ताला मुझे और आपको दे रहे हैं, वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, ये है वो भूला व सबक उम्मत को जो चौथे बारे में आ जाता है। क्या? सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो और तफरकों में ना पड़ो। अल्लाह की इस एहसान को याद करो जिसने तुम पर किया। तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, इसने तुम्हारे दिल जोड़ दिए, और इसके फजलो करम से तुम भाई भाई बन गए। तुम आग से भरे हुए घड़े के किनारे पर खड़े थे, अल्लाह ने तुमको इससे बचा लिया। इस तरह अल्लाह अपनी निशानियां तुम्हारे सामने रोशन कर देता है, शायद कि इन अलामतों से तुम्हें अपनी फलाह का रास्ता मिल जाए। ये है असल में बात है समो, जब हकीकी तकवा अंदर आता है ना, तो इंसान अपनी अना के बुत से निकल आता है, और जब अना का बुत टूटता है ना, तो फिर इत्तेहाद आता है। आज उम्मत को उम्मते वसत बनने के लिए अल्लाह की रस्सी को मजबूत थामना है, और अल्लाह की रस्सी क्या है? आसमान से लटकी हुई। इब्ने अब्बास का गालिबन कौल है कि वो कहते हैं कि ये रस्सी क्या है? कुरान। आसमान से लटकी है, एक सिरा इसके रब के हाथ में, मैं और आप जब इसको लेंगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप देखिए कि आज इस पे उम्मत का जो बहुत बड़ा मसला है वो क्या है कि तफरकाबाजी। वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जितने लोग उतने हुक्के और उतनी उतनी चीजें। ये चीज कब आती है? जब कुरान की रस्सी छुटती है। एक तसव्वुर से मिसाल दिखाना चाहूंगी, जैसे आप देखिए कि ये छत है ना, इधर से आप एक रोप फेंकते हैं, ठीक है? अब वो एक रोप जो है वो आप पकड़ना चाहते हैं, अब आप सारे उसको नहीं पकड़ सकते, सीधी है। स्ट्रिंग के साथ मैं अक्सर दिखाती हूँ ये चीज, बस आप देखिए कि ये एक लंबी स्ट्रिंग है, और आप सब जितने लोग इस हॉल में, मार्शल आपसे कहा जाता है कि स्ट्रिंग को पकड़े, कितने को लोग इसको पकड़ेंगे? सिरे पे तो एक ही दो हाथ आएगा, कुछ इधर पकड़ेंगे, कुछ इधर, कुछ इधर, कुछ इधर, नहीं हो सकेगा। अब आप क्या करें? कोई आपको कहता है कि इसका एक तरीका है, वो क्या, इस स्ट्रिंग के नीचे एक लूप बना दो, यानी एक नीचे लंबा सा कुंडा बना दो, तो क्या उम्मीद है ना कि हम सारे उसके कुंडे के करीब आएंगे और आखिर में वो रस्सी हमारे हाथ में होगी। ये कुरान, जब हम इसको वुस्सत नजरी के साथ और कुरान और सुन्नत की रोशनी में थाम के नीचे लटकाएं और सारी उम्मत को कहेंगे तुम इस कुरान को पकड़ लो, तो आप बताइए कि आप सब जो भी इतने दूर दूर बैठे हैं, आप कोशिश करके, रस्सी बड़ी होगी इतनी जिसको आप पकड़े, तो आप सारे क्लोज हो जाएंगे ना। इसके बरक्स अब इस कमरे के ये चार लाइटों के नीचे चार रोप फैला दें, और आपसे कहा जाए कि अपनी मर्जी की रस्सी पकड़ लें, तो अभी जो आप सारे सिस्टम से बैठे हैं ना, फिर ये भी नहीं होगा कि सब इक्वली उस रस्सी को पकड़ेंगे। जिसको जो रस्सी का रंग अच्छा लगेगा, एक तरफ बहुत ज्यादा होंगे, दूसरी तरफ थोड़े। अब इसे एक रूम में चार गिरोह बन गए। ये आज उम्मत का मसला, चार रस्सियां जो लटकाई, तो उन चारों का ऊपर एक सिरा बना दो, चारों का लूप इसके साथ लगा दो। हो सकता है मेरी बात समझ आई हो सकता है और मुश्किल लगी हो, लेकिन कुरान और सुन्नत से खुद को जोड़ना, किसी फिरके, किसी मसलक, किसी शख्सियत से जोड़ने की बजाय उनके तरीके पे अमल कीजिए। वो सब कुरान सुन्नत देने वाले थे, लेकिन बाद में हमें नस्बतें ज्यादा प्यारी हो गई, इदारे, नाम, शख्सियात प्यारी हुई। इख्तलाफात शुरू में थे, इख्तलाफ राय तो बहुत खूबसूरत होता है, उसी से तो वैरायटी आती है। हाँ इख्तलाफ करना है, मुखालफत नहीं करनी। इब्ने अब्बास की राय किसी मामले में और थी, इब्ने मसूद की कोई और थी, अबू हुरैरा कुछ और कहते थे, इब्ने उमर, मुमकिन है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। इस पर मैं आपको एक रिकमेंड करूंगी लेक्चर, अपनी कदर पहचानो, पुरानी दावा सीडीज में है, वेबसाइट पे है, ऑनलाइन भी इंशाल्लाह इसका लिंक दे दें, बल्कि आपको घर में भेज देंगे, इसकी तफसीर सुन लें। हमने इसको डिटेल से देखा हुआ है, आज उम्मत को जिस सबक को पढ़ाने की जरूरत है वो कह के अल्लाह की रस्सी को थाम लो। और अल्लाह की रस्सी को थामने के रास्ते में शख्सियात होती हैं, मैं भी छोटी, अब चार लोग हैं तो चार सदर हैं, चार वजीर हैं, चार की शूरा, अब जब चारों को जमा करके एक में करेंगे तो तीन जमातों के सदर तो उतरेंगे, तीन जमातों की शूरा को एक तो बनाना पड़ेगा। तो जब जात अंदर आ जाती है ना तो फिर इत्तेहाद नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें आज गिरती हुई उम्मत को कुरान की रस्सी से थामने का जरिया बना दे। आज हम उम्मत तो रहे भी नहीं, बेबुक्कत हो गए, कमजोर हो गए। आज कोई के वी आर मुस्लिम कहते नहीं, व्हाट काइंड ऑफ मुस्लिम, आर यू शिया मुस्लिम, सुन्नी मुस्लिम, पाकिस्तानी मुस्लिम? और देखिए जमातों में फिर जमातें बनी, पहले हम दीन के नाम पे कटे, चार पांच ग्रोहों में बट गए, फिर उसके बाद हम कौमियत के नाम पे कटे तो सिंधी और मुहाजिर बन गए, फिर हम नेशनल बेस पे अपने मुल्क के अंदर देखे तो हम पंजाबी, सिंधी और मुहाजिर और के और नाम बन गए, फिर उसके बाद चली तो जातों में बट गए। आज कई लोग हैं जो दूसरी जात को बेवकूफ समझते हैं, कहते हैं हाँ हैं वो पंजाबी लेकिन अच्छे लोग हैं, यानी मित्र के सारे अच्छे तो नहीं होते, ये अच्छे हैं, हाँ हैं वो पठान लेकिन वो काफी अकलमंद है। याद रखिए अल्लाह ये एक जुमला भी पकड़ेगा और इस एक जुमले से उम्मत कटती है। आज हम मुसलमानों ने खुद अपनी उम्मत को तोड़ा, किसी का कॉल है और इस पे बहुत डिटेल से बात है, एक बुक छोटी सी पढ़ाई थी इत्तेहाद मिल्लत, उसमें भी बहुत कुछ है, क्योंकि ये मौजू आज पानी की तराम करने की जरूरत है, क्योंकि आज बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए कुरान नहीं पढ़ने आते कि हम अपने मसलों और अपने फिरके के बाहर नहीं जाते, और उनके वालों ने नहीं पढ़ाया तो वो इस पे मुतमईन है कि हमें नहीं पढ़ना। तो याद रखिए कि ये मौजू सुनने के काबिल है, इस बारे की आयात तदब्बुर यही है। इंशाल्लाह आपको इसकी तफसीर का लिंक जाएगा ईमेल में, जब आपको फुर्सत मिले डिटेल से सुन ले। लेकिन यहां दुआ करें कि हमने अपने रब से जुड़ना है, और जब रब से जुड़ना है तो फिर अल्लाह कॉन्शियस होना पड़ेगा, पीपल कॉन्शियस नहीं होना। कुछ लोग पीपल कॉन्शियस होते हैं, कुछ कैमरा कॉन्शियस होते हैं, कोई लुक्स के कॉन्शियस होते हैं, किसी को कुछ अच्छा लगता है। जब आप और मैं इस सोच को देखेंगे ना कि मैंने अल्लाह की नजरों में बड़ा बनना है, तो आप खुद को कीमती सोचेंगे, और हर नेमत के सिरे को जब रब से जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अल्लाह दूसरों को भी हमसे जोड़ देगा। और अपने आप को इस फिक्र में रखें कि मैंने अपने आप को अल्लाह की नजरों में लाना है। अरब के हालात तो इससे बहुत बदतर थे जब नबी सल्लम रसूल बनाकर भेजे गए, लेकिन अल्लाह के नबी के जरिए से अल्लाह ताला ने इन सबको जोड़ दिया। नेक्स्ट हुक्म क्या है इस बारे में, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैरि व यामुरून बिल मारूफ व यनहूना अनिल मुनकर, तुम में से कुछ लोग ऐसे जरूर होने चाहिए जो नेकी की तरफ बुलाएं, भलाई का हुक्म दें और बुराइयों से रोकते रहें। जो लोग ये काम करेंगे वही फलाह पाएंगे, कहीं तुम इन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए और खुली खुली वाज़ेह हिदायत आ जाने के बाद फिर इख्तलाफात में मुबतला हो गए। जिन्होंने ये रविश इख्तियार की वो इस रोज सख्त सजा पाएंगे, जबकि कुछ लोगों के चेहरे रोशन होंगे और कुछ लोगों का मुंह काला होगा। जिनका मुंह काला होगा उनसे कहा जाएगा नेमत पाने के बाद भी तुमने कुफर का रवैया इख्तियार किया। नोट कीजिए यहाँ, फिरका वारियत को हवा देने वालों को अल्लाह ताला ये खबर दे रहे हैं कि उनके चेहरे क़यामत के दिन स्याह होंगे। अच्छा तो अब इस कुफराने नेमत के सिले में इस अजाब का मजा चख लो, रहे वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे तो इनको अल्लाह के दामने रहमत में जगह मिलेगी और हमेशा वो इसी हालत में रहेंगे। ये अल्लाह के इरशादात हैं जो हम तुम्हें ठीक ठीक सुना रहे हैं, क्योंकि अल्लाह दुनिया वालों पर जुल्म करने का कोई इरादा नहीं रखता। जमीन और आसमान की सारी चीजों का मालिक अल्लाह है और सारे मामलात अल्लाह ही के हजूर पेश किए जाते हैं। क्या पता चला कि जब एक उम्मत अल्लाह से डरती है तो उसको कुरान अच्छा लगता है, जब कुरान को थाम लेंगे तो फिर अगला हुक्म जो असल में उम्मत वसत के लिए है वो क्या है कि वल तकुम मिनकुम उम्मत, तुम में से एक गिरोह ऐसी हो। इसीलिए अब देखिए अगली आयत में अल्लाह ताला करे कुन तुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास, तुम हो वो उम्मत जिसको अल्लाह ने लोगों के लिए निकाला। ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला हमारे सर पर इज्जत का ताज रख रहे हैं और हमने यूं सर झटक के रख दिया। याद रखिए कि उम्मत को जोड़ने के लिए मुझे और आपको इन आयात में जो हुक्म मिला वो क्या है कि लोगों को नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ, ना कि आप लोगों को अपने फिरकों और जमातों की तरफ बुलाओ। याद रखिए ये उम्मत अल्लाह के नबी ने बड़ी मेहनत से जोड़ी। सुहैब रोम से आए थे, बिलाल मक्का के थे, सलमान फारिस से आए, कैसे अल्लाह के नबी ने प्यार और मोहब्बत इन सब को एक नेशन बनाया। कभी ये किसी ने नहीं कहा था कि बिलाल तो हबशी हैं, तो ये काबा की छत पे खड़े होकर अजान क्यों दे रहे हैं। कोई वहां नाम नहीं थे ऐसे, लेकिन आज हमने इस उम्मत की धजियां बकेर दी, हमने खुद अपनी उम्मत को तोड़ा। बाद में अगर यहूद और हनूद ने अगर उस कटी हुई उम्मत को तोड़ दिया तो क्या बड़ी बात हो गई। आज उम्मत को जोड़ने के लिए हम सबको मोहब्बत की बात पैदा करनी पड़ेगी। देखिए जब गोल कॉमन होता है ना, आपने कभी फुटबॉल का खेल देखा होगा, एक बॉल है ना तो सब खिलाड़ी उसके पीछे भाग रहे हैं, तो सब एक जगह, जिधर बॉल है वो देख लीजिए सब उधर होंगे, किसी एक के हाथ में आ जाए वो कहते हैं कोई बात नहीं टीम हमारी जीती। जब एक कोर्ट में दो बॉल डाल दें तो क्या होगा, उनकी टीम टूट जाएगी, कुछ इधर जाएंगे कुछ उधर जाएंगे। और अगर आप एक फुटबॉल के प्ले ग्राउंड में आप चार छह बॉल डाल दें तो क्या जीतेगा, कौन जीतेगा। कॉमन गोल मेरा और आपका उम्मते वसत का क्या था, बोलिए, या मुरू न बिल मारूफ वयन हव न निल मुनकर। मैं और आप इस दुनिया में क्लीनिंग का काम करने के लिए आए थे, हमें अल्लाह ताला ने इसलिए भेजा था कि हम बुराइयों को रोकें, हम खामोश न रहें, हम गलत चीजों को देखकर इट्स ओके डोंट वरी माइंड योर बिजनेस डोंट टॉक अबाउट रिलीजन इट्स पर्सनल मैटर। मैं और आप तो इतने साफ पसंद थे कि पूरी दुनिया की गंदगी अल्लाह के नबी और सहाबा के जरिए दूर हो गई जहां तक वो पहुंच सके, लेकिन आज क्यों नहीं गंदगी दूर हो रही। और जिस दिन उम्मत मुस्लिमा को होश आ गई, दुनिया से गंदगी करप्शन खराबी यूं भागेगी कि ये दुनिया जन्नत का टुकड़ा बन जाएगी। याद जहां चारों तरफ आपको खराबियां दिखते हैं उसमें मेरा और आपका काम है। सफाई करने वाले जब काम ना करें तो गंदगी फैलती है। आज उम्मत मुस्लिम इखलाकी गंदगी फैलाने की जिम्मेदार है। हम खुद नहीं गंदे होते, दूसरों को गंद करता देखते नहीं रोकते, कुछ अरसे बाद हमारे अपने बच्चे वही काम कर रहे होते हैं, हमारी अपनी नस्लें वही कर रही होती हैं। और याद रखिए कि अल्लाह हमें बता रहा है कि बाकी लोग अपने लिए जीते हैं, तुम दूसरों के लिए जियोगे। मैं और आप अपने लिए नहीं आए, और हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता काफिर दुश्मन जब तक कि हम उम्मत बन के रहेंगे। और तारीख को पढ़ के देखिए, कुफार क्या तो ज्यादा मुसलमान नहीं मारे गए, जितने लोग मारे गए वो मुसलमानों के अंदर से फटे हुए ग्रोहों और एक दूसरे से लड़ाइयों में फटे। आप स्पेन की मिसाल ले लीजिए, स्पेन कैसे टूटा, जाइए जो बच्चियां इंग्लिश पढ़ सकती हैं गूगल में हिस्ट्री में डाल के पढ़ें कि डाउनफॉल ऑफ स्पेन क्या था। 600 साल तक मुसलमान वहां हुक्मरान थे, मैं खुद जाके देखी हूँ, यकीन करें उनकी गलियों में से रोने की आवाजें आती हैं, ऐसे तड़प, वहां की मस्जिदें देखें, वहां आप अलहमरा को देखिए, यकीन करें, ठीक है सियासी गलबा टूटा है लेकिन आज भी दावत का गलबा मौजूद है। आज भी वहां स्पेन का एक शहर है जहां दुनिया का सबसे बड़ा दावा सेंटर है। तो दावत का मैदान तो दुनिया में सब जगह खुला हुआ है। अगर झंडा आपके मुसलमान नाम का नहीं लगा नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन असल बात यह कि उम्मत का बिगाड़ खराब करता है। घर में शौहर बीवी में झगड़ा हो जाता है ना तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, उस फैमिली की इज्जत ही नहीं खानदान में रहती जो फैमिली खुद आपस में झगड़ती रहती है। तो आज हमने खुद दुश्मन बनकर दिखाया। वो कहते हैं ना कि आप जैसे दोस्तों के होते हुए दुश्मनों की क्या जरूरत है, आज हमने खुद ये सारे काम किए। इसलिए मुझे और आपको इस चीज की फिक्र करनी है, कुछ करके जाएं, कुछ सोचें। आप कहेंगे ये काम हमसे तो नहीं होगा, ये तो बड़ी जमातें ही करेंगी, सियासी लीडर्स को बुलाएं कॉन्फ्रेंस करें। तो वो कहते हैं हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। आप यहां से ये सोच लेकर उठें कि मैंने कुरान सुनने से जुड़ना है, माई नेम इज मुस्लिम, बस ये आपका नुकता है, आगाज होगा इस उम्मत को जोड़ने का, फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर अपने नामों को छोटा करना है, फिर दूसरी चीजों पर लेना है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा फायदा होगा, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सहाबा की जिंदगियां इस पे खप गईं, उनको भी मदीना अच्छा था अल्लाह के नबी के बाद, लेकिन मदीना खाली हो गया अल्लाह के नबी के दुनिया से जाते ही। उनको वो पैगाम याद था कि तुम में से जो हाजिर है वो गायब को पहुंचा दें ये पैगाम। वो दुनिया में पहले जहां गए अपने ईमान अपने अमल अपने तरीकों से मुसलमान करते, इलाकों के इलाके फतह हुए हजरत उमर के दौर में। ओनली 10 ईयर्स ऑफ हजरत उमर का जो दौरे खिलाफत था, ये सब जो आज बड़े बड़े मुस्लिम उम्मत के नाम है जिसको अरब कंट्रीज कहते हैं, ये उमर का तोहफा है। अगर वो भी बैठ के तस्बीहों पे ला इलाहा इल्लल्लाह की तस्बीहां 1.25 लाख दफा पढ़ रहे होते तो वो तस्बीह पढ़ने वालों को भी काफिर मार जाता है। याद रखिए, जब हम दूसरों तक दीन नहीं फैलाते तो इबादत करने वालों को मस्जिदों में मार दिया जाता है, फजर में जाते हैं वापस नहीं आ पाते। आज माएं अपने बच्चों को मस्जिद में भेजते हुए डरने लगी, कहां मुस्लिम मुल्कों में, कि पता नहीं कोई दहशतगर्दी का शिकार ना हो जाए, पता नहीं मेरे बच्चों ने वापस आना है कि नहीं आना। ये सजा है उम्मत को इस काम को छोड़ने की, और अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। बातें तो इस पे बहुत हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप सब वो लिंक्स से सुन लेंगे और फिर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें अपना काम करने की तौफीक दे। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं वलौ आमन अहलुल किताब लकान खैरल लहुम मिनहुमुल मोमिनून वल अक्सरहुमुल फासिकून। यही किताब ही मान ले आते तो इन्हीं के हक में बेहतर था, ना मारे जाते। कभी आप सोचिए, आपको तो शायद अभी इतना तेजी से सोचना ना आए, डोंट वरी, ये मैं आपकी रियायत के लिए जुमला बोल रही हूँ, लेकिन जब इंशाल्लाह आप डिटेल से कुरान पढ़ेंगे तो आपके जहन में एक क्वेश्चन जरूर उभरेगा, काश मदीना के वो मुट्ठी भर यहूद मुसलमान हो जाते जिन्होंने अल्लाह के नबी को देखा था। अगर वो हो चुके होते आज पूरी दुनिया पे इस्लाम का तगलबात, वहां तो थोड़े से थे, उन्होंने तो अपनी आंखों से देख लिया, यारिफून न हो कमा यारिफून अब ना हूं, वो तो पहचान भी गए थे अल्लाह के नबी को कि ये सच्चे नबी। वो चंद सौ यहूद थे वो मुसलमान होते, और ये जितनी ऑर्गेनाइज और वेल डिसिप्लिन और टैलेंटेड कौम है, इन्होंने दुनिया को मुसलमान कर देना था। ये तो आज इस्लाम का गोल हमारे हाथों में आया हुआ ना, हम जैसे बेकार लोगों के, और बेकार इसलिए कहती हूँ कि डिसऑर्गेनाइज हो गए हैं, काम करना नहीं, ना प्लानिंग करनी आती है, ना कोई गोल्स है, ना मोल्स हैं, कुछ भी नहीं है। आज का दीन अगर इन लोगों के हाथ में इस्लाम होता तो देखिए दुनिया को ये कैसे पहुंचाए। और ये बात लिख ले, हम रहे ना रहे, अब दुनिया को जो इस्लाम देंगे ना वो यही वेस्ट के लोग देंगे। इनके लोग बड़े बड़े मुसलमान हो रहे हैं, एक सरदार मुसलमान होता था, कबीला मुसलमान होता था। जिस तरह इन्होंने दुनिया को साइंस दी, टेक्नोलॉजी दी, आप सिर्फ एक छोटी सी बिल्डिंग से होके आते हैं तो आपको एहसास हो जाता है ये नॉन मुस्लिम के जरिए रन हो रही है या मुस्लिम के जरिए। एयरपोर्ट से आप उतर के दूसरे एयरपोर्ट जाते हैं तो आपको समझ आ जाता है कि अब हम अपने जोन में आ गए। इज इट ट्रू और नॉट? तो जब इनके पास इस्लाम आएगा तो ये कैसे पेश करेंगे? वो होगा क्या अहसन तकवीम, वो दौर होगा। और इसके लिए अल्लाह रिवर्ट्स को ला रहा है, ये हम सब ने खत्म हो जाना है। कुछ दो चार सदियों की मार है हम बोन मुस्लिम्स, जैसे वादी तीम में बनी इसराइल मारी गई थी ना 40 साल के अंदर, हमारा ती का मैदान कोई 400-500 साल पे लगा हुआ है, हम बोन मुस्लिम खत्म होते जा रहे हैं। ये रिवर्ट सामने आ रहे हैं, उनका रोना धोना देखे, उनकी कोशिश देखे, जो जिस जुबान का मुसलमान हो रहा है वो जुबान में दावा का काम कर रहा है। ह्यूस्टन में एक लंबा अरसा रही हूँ, वहां एक सिस्टर हमारे अपने सामने मुसलमान हुए, यानी एक मस्जिद को रन करते हैं मेरे इन लॉज, तो वहीं वो बच्ची आई थी, यंग थी, कपल आया, ऑफकोर्स वो मैरिड तो नहीं थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे नाम, वो वहां मुसलमान हुई, लड़का भी साथ आया, ये दोनों मुसलमान हो गए, यानी दोनों किसी तरह इस्लाम से इंप्रेस हुए, मुसलमान हो गए। उसके बाद क्या हुआ, फिर हमने उनको देखा, वो बकायदा मस्जिद में आते थे, उनके लिए क्लासेस हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, कोई कोर्स उस दौर में इंग्लिश का जो भी, मैं और मेरे शौहर लेने जाते थे वहां, वो कपल भी होता था। कुछ अरसे के बाद हमें खबर मिली कि इस लड़की का ससुर, यानी लड़के ने अपने बाप को मुसलमान कर लिया। अब क्या हुआ, जहां हम जाए देखें तो वो बाप भी मौजूद है, यानी ससुर और बहू और बेटा मौजूद है। अगले ट्रिप में गए तो पता चला कि वहां एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, इस्लाम इन स्पेन। फिर क्या हुआ, स्पेनिश में कुरान, आप किसी से जाके देखिए ह्यूस्टन में, आप पूछिए, इस्लाम स्पेनिश के नाते से एक पूरी जगह लेके वो लोग यूं दिन भर काम कर रहे हैं, उन्होंने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बना ली, गम लगा हुआ है। हमने कुफर देखा नहीं है, हमने शराबें पी नहीं है, अल्लाह कभी ना पिलाए, हमने वो डिप्रेशन की जिंदगी और जिना और बदकारियां और गंदगी की जिंदगी देखी नहीं है, इसलिए उसे नफरत नहीं है। जिसने गंदगी देखी थी वो कहते मैं अपने बच्चों को इसमें नहीं कूदने दूंगा। फिर हम जब इजिप्ट गए, मजे की बात देखिए, मैं शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ गई तो इत्तफाक देखिए उन्हीं दिनों में वो कपल भी इजिप्ट गया हुआ है, उन्होंने भी वहां रहकर सीखा, जहां हम गए हुए थे वो दूसरी जगह में थे, हम दूसरी जगह में थे, फिर वहां हम मिले। इतना मुझे अच्छा लगा, कहाँ का ये कपल चलता फिरता एक मुस्लिम मुल्क में, हमें सिर्फ इस्लाम के नाम पर मिल रहा है। फिर उनके बच्चे हुए, एक बच्चा दूसरा बच्चा, वो काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने गंदगी देखी है। गुना भी बाज दफा इंसान के लिए खैर का जरिया बनता है क्योंकि उसकी फिर कबाहत और उसका ग्रज है। हम शुरू से ढीले ढीले मुसलमान थे और ढीले ढीले ही गुनाहगार थे, ढीली ढीली नेकियां, ढीले ढीले गुना, और इसी तरह से। तो इसके लिए हमें अपने अंदर एक ग्रज पैदा करने की जरूरत है, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। अगर ये चंद लोग भी मुसलमान हो जाते तो इनके हक में बेहतर था, अगर चीन में से कुछ लोग ईमानदार भी पाए जाते हैं, मगर इनके बेशतर अफराद ना फरमान है। ये अल्लाह का हुक्म है, मैं नहीं कह रही, आप नहीं कह रहे, अल्लाह का कलाम कह रहा है कि अक्सर हुमुल फासिकून।